नमस्कार भारत, तारीख 14 जून दिन बुधवार, मैं हूं प्रभात पांडे। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखलंदाजी में नहीं था शामिल। गोरक्षा या लव जिहाद के नाम पर भीड़ के गुस्से का शिकार बने लोग, क्या कम हो रहा है पुलिस का असर?
कानून नाम की चीज नहीं, एक आदमी गवर्नमेंट पास कर रही है, सब कुछ कर रही है, लाइसेंस दे रही है, वैट ले रही है, साइन ले रही है, उसके बाद फिर वही माल पकड़ा जा रहा है। डोर शटल का कोई रोल ही नहीं इसमें, से प्रशासन का काम है।
राष्ट्रपति चुनाव में क्या होगी विपक्ष की रणनीति? और चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और पाकिस्तान की टक्कर। लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी दखल की जांच कर रही सीनेट की कमेटी के सामने पेश हुए हैं। उन्होंने रूसी अधिकारियों से चुनाव प्रचार के दौरान निजी मुलाकातों से इनकार किया और रूस के साथ मिलकर राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोपों को झूठा बताया। अमरीका में पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए रूस और ट्रंप के प्रचार के कथित संबंधों की जांच चल रही है। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने की कवायद जारी है। प्रधानमंत्री टेरिजा मे की कंजर्वेटिव पार्टी और उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के बीच कल रात को समझौता तो नहीं हो पाया, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच आज सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। डीयूपी की नेता आर्लिन फॉस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री टेरिजा मे के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही है, लेकिन ब्रिटानी सरकार के कट्टरपंथी प्रोटेस्टेंट डीयूपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय की मुख्य पार्टी ने इस समझौते को लेकर चिंता जाहिर की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ में बने रहना चाहे तो दरवाजे अभी भी खुले हैं। पेरिस में ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया है, लेकिन इसे बातचीत शुरू होने तक कभी भी पलटा जा सकता है।
Con este acto, las FARC queremos mostrarle al país y al mundo.
ब्रेक्सिट पर बातचीत खत्म नहीं होती तब तक दरवाजे खुले हैं। इस वक्त मैं ये भी कहूंगा कि जहां तक ब्रिटेन के लोगों के संप्रभु फैसले का सवाल है, मैं इसका सम्मान करता हूं। वो चाहे फ्रांस के लोग हों या फिर ब्रिटेन के लोग, जब वो अपने लिए फैसला करते हैं तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन ये यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नजरिए से कहा जाए तो प्रक्रिया पूरी होने तक दरवाजा खोलने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये काफी मुश्किल होगा। ये थे इमैनुअल मैक्रों के शब्द। वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि ब्रेक्सिट में अब देरी नहीं की जाएगी और अगले हफ्ते ही ब्रेक्सिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया के फार्क विद्रोही गुट ने संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को 30% हथियार सौंप दिए हैं। ये हथियार पिछले साल हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत सौंपे गए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ह्वान मैनुअल सेंटोस ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे साफ होता है कि वामपंथी विद्रोही योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। फार्क विद्रोही गुट ने अब तक अपने 60% हथियार सौंप दिए हैं। शांति समझौते के तहत फार्क गुट ने अपने 50 साल के सशस्त्र संघर्ष को खत्म कर राजनीतिक पार्टी बनने पर सहमति जताई थी। फार्क विद्रोहियों के कमांडर पाब्लो केंटेटुम्बो ने कहा कि ये एक नई शुरुआत है। इस वक्त फार्क देश और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम देश के इतिहास का एक अध्याय को बंद कर रहे हैं और शांति का नया अध्याय लिखने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे दिल में शांति है और हमारी प्रतिबद्धता पूर्ण है। हम अपने सपनों का देश बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। ये थे पाब्लो केंटेटुम्बो के शब्द। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर स्पेन में टैक्स में करीब $1.5 करोड़ की हेराफेरी करने के आरोप लगे हैं। रियल मैड्रिड टीम के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनकी मैनेजमेंट टीम ने भी सफाई दी है कि उन्होंने टैक्स चोरी की कोशिश नहीं की है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं प्रभात पांडे। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप की जांच के सिलसिले में अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की सीनेट की एक कमेटी के सामने पेश हुए। जेफ सेशंस ने सीनेट कमेटी के सामने अपने बयान में साफ कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की किसी भी कोशिश में शामिल नहीं थे और ये आरोप लगाना उनका अपमान है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
अमेरिका के अटर्नी जनरल जेफ सेशंस ट्रंप प्रशासन के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अब तक राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप के मामले में सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हुए हैं। जेफ सेशंस ने राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए रूस के साथ सांठगांठ करने के आरोप को अपना अपमान बताया है। जेफ सेशंस ने कमेटी में कहा, जिस देश की मैंने 35 साल तक सम्मानपूर्वक सेवा की है, उसे नुकसान पहुंचाने या उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए रूस सरकार के साथ सांठगांठ में मेरे शामिल होने की बात घिनौना झूठ है। जेफ सेशंस के शब्द। अलबामा राज्य के सीनेटर रह चुके जेफ सेशंस चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार थे। अमरीकी मीडिया में जेफ सेशंस की रूसी राजदूत सर्गेई किसलेक से मुलाकातों की चर्चा है। जेफ सेशंस ने सीनेट कमेटी से कहा कि उन्होंने रूसी राजदूत से दो मुलाकातें की थीं, लेकिन मीडिया में बताई जा रही प्रचार के दौरान की तीसरी मुलाकात से उन्होंने इनकार किया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए रूस की कथित हस्तक्षेप की जांच सीनेट कमेटी, कांग्रेस के कई पैनल के अलावा विशेष अधिवक्ता भी कर रहे हैं। कल ही राष्ट्रपति ट्रंप के एक करीबी मित्र ने कहा था कि विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट म्यूलर को जांच से हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। इस पर अमरीका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोसेनस्टाइन ने सफाई दी है और उन्होंने सीनेट को बताया है कि पर्याप्त वजह नहीं मिली तो वो रॉबर्ट म्यूलर को हटाने का आदेश नहीं मानेंगे।
Senator, I'm not going to follow any orders unless I believe those are lawful and appropriate orders under the regulation.
Senator, अगर आदेश कानूनी और उचित नहीं होता तो मैं उसे नहीं मानूंगा। नियम के अनुसार विशेष अधिवक्ता म्यूलर को बिना सही वजह के हटाया नहीं जा सकता और मुझे इसके लिए लिखित में चाहिए होगा। अगर सही कारण होगा तो मैं इस पर सोचूंगा, नहीं तो कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानूंगा। रॉड रोसेनस्टाइन के शब्द। इससे पहले पूर्व FBI प्रमुख जेम्स कोमी भी इस कमेटी के सामने पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो मानते हैं कि कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच को प्रभावित करने के लिए उन्हें हटाया गया था। जेफ सेशंस ने कोमी के एक बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने में उन्हें असुविधा महसूस होती है। इसकी जानकारी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को दी थी। हालांकि बीबीसी संवाददाता एंथनी जर्चर के मुताबिक अमेरिका में अभी विवाद रूस और ट्रंप के प्रचार के संबंध से ज्यादा इस बात पर है कि FBI प्रमुख कोमी को किन परिस्थितियों में हटाया गया और इस बारे में जेफ सेशंस ने कोई ठोस बात नहीं की।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। अब चलते हैं लंदन। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या को प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई में जमानत मिल गई है। कल वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत में उन्हें ये जमानत दी गई। माल्या पर कई बैंकों से लिया कर्ज ना चुकाने का आरोप है और भारत उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। क्या है पूरा मामला, मैंने बात की लंदन में मौजूद BBC संवाददाता विनीत खरे से।
देखिए, विजय माल्या पिछले एक साल से ऊपर से लंदन में है और भारत सरकार चाहती है कि विजय माल्या वापस हिंदुस्तान में आए क्योंकि उनके खिलाफ फ्रॉड का केस है। उसके बाद से आपको याद होगा 2012 में जो किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई थी, आरोप है कि उन्हें जिस काम के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के लिए जो पैसे मिले थे स्टेट ओन्ड IDBI बैंक से, उस पैसे को उन्होंने किंगफिशर के अलावा कहीं और डाइवर्ट किया फंड को। ऐसे करके उनके बहुत सारे उनके ऊपर इल्जाम हैं, लेकिन विजय माल्या इस वक्त लंदन में हैं तो भारत सरकार चाहती है कि वो उन्हें भारत वापस लाया जाए। उसे लेकर एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भारत सरकार की तरफ से भेजी गई थी जिसके कारण विजय माल्या को, आपको याद होगा, उन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें कंडीशनल बेल के बाद रिहा कर दिया गया। तो आज उनकी जो एक्सट्रेडिशन का मामला चल रहा है, यानी उन्हें ब्रिटेन से भारत सौंपने का जो मामला चल रहा है, उसी की हियरिंग थी और विजय माल्या गए और उसके बाद से जब वापस कोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया और उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई आपके इतने सारे घर हैं यहाँ पे, तो उनका कहना था मैं तो 90 के दशक से यहाँ रह रहा हूँ। फिर उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और उन्होंने कहा कि उतनी जान भाग नहीं रहे हैं।
विनीत, बस संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत जो उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, तो उसके सिलसिले में ये जो डेवलपमेंट हुआ, उन्हें जमानत मिली, उसका क्या असर पड़ेगा?
देखिए, ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, कानूनी कार्रवाई है, और उसमें भारत सरकार को जो कागज देने हैं या किन कारणों से वो चाहते हैं कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण हो भारत में, तो जब तक अदालतें हैं वो इस बात पर कन्विंस नहीं हो जाती कि जो मामला है वो सही है और जो भारत सरकार की रिमांड है या मांग है वो सही है, उसी आधार पर ये प्रत्यर्पण का पूरा मामला आगे बढ़ेगा। तो इसकी ये भी आज कहा गया कल अदालत में कि भारत सरकार की तरफ से दूसरी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट, प्रत्यर्पण की जो रिक्वेस्ट है वो भेजी जा सकती है। ऐसा जो है विजय माल्या के जो वकील हैं, ऐसा रिपोर्ट है कि उन्होंने ऐसा कहा। तो भारत सरकार की जो कोशिश है, आपको याद होगा कि भारत, चाहे वो अरुण जेटली हो या फिर जो उनकी मीटिंग्स हुई थी ब्रिटेन के मंत्रियों से, तो भारत की कोशिश है कि उन्हें वापस लाया जाए और जो मामले चल रहे हैं वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। विजय माल्या का कहना है कि भाई ये जो पूरा किंगफिशर का मामला था वो एक कॉर्पोरेट जगत में कंपनियां बंद होती हैं तो उसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, उसमें जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसको समझने की जरूरत है। तो ये दोनों पक्ष हैं, अभी देखना होगा कि ये कितना लंबा खिंचता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी मामला हल हो जाएगा।
विजय माल्या को मिली जमानत, बता रहे थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। और अब आते हैं भारत, जहां मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर चल रही राजनीति के बीच 24 घंटे के अंदर 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। वहीं किसानों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल भी आमने सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां आज मंदसौर जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में 72 घंटे का सत्याग्रह करेंगे। पेश है भोपाल से शुरेह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कर्ज से परेशान 3 किसानों ने 24 घंटे के अंदर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। होशंगाबाद के सिवनी मालवा के किसान माखनलाल डिगोलिया ने पेड़ पर लटक कर अपने को खत्म कर लिया, तो विदिशा के शमशाबाद के हरि सिंह जाटव ने जहर खाकर खुदकशी कर ली। उन्हें भोपाल भेजा गया लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र सीहोर जिले के रहटी तहसील में रहने वाले दुलचंद कीर किसान ने 6 लाख रुपए के कर्ज से तंग आकर जहर खा लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। किसान हरि सिंह जाटव के बेटे ने बताया कि उनकी जमीन का माप सही तरीके से नहीं किया गया था। हरि सिंह पर मात्र 1 लाख रुपए का कर्ज था।
पटवारी ने सीमांकन गलत कर दिया था, इसकी वजह से पैसे ले लिए, कुछ भी ले लिए, जिससे उन्होंने संडे के दिन न पी थी हमारी जमीन, तो सोमवार दिन शाम को टाइम उन्होंने खा ली थी। पास कुछ कमाने का नहीं, सिर्फ पापा जी कमाते थे, वो भी 100-150 रुपये की मजदूरी करते थे और किसान ही करते थे। अब वो मेन किसान ही था, अब वो ही निकल गई, उन्हें बहुत टेंशन हो गई थी इस वजह से।
मंगलवार को भी प्रदेश की राजनीति में किसानों का मुद्दा छाया रहा। मंदसौर जाने के प्रयास में सुबह हार्दिक पटेल को पहले रोका गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंदसौर जाने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिए गए। किसानों के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से भोपाल में 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया,
हमारे जो सीनियर लीडर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक्स यूनियन मिनिस्टर, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश के किसानों की जो मांगे उनके समर्थन में धरना रखा है। आपको विदित होगा कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में 6 किसानों की गोली मारकर हत्या हुई। हम उसका हत्या शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक अभी तक ये मांग जारी रखी है कि उन पुलिस वालों के ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। दूसरा, मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का विषय, मध्य प्रदेश के किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विषय, मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या का विषय, जो कि जितनी किसानों से जुड़ी समस्या है। इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने कल ये 72 घंटे का सत्याग्रह आयोजित किया।
मंदसौर मामले के काफी हद तक शांत हो जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस मामले में सक्रियता भी हैरान कर रही है। हालांकि जानकार इसे अगले साल होने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज मंदसौर में पीड़ित किसानों से मिलने जा रहे हैं और हालात की समीक्षा भी करेंगे। यह तय है कि आज का दिन भी प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी भरा होगा। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
मंदसौर में किसानों को लेकर चल रहा तनाव, रिपोर्ट सुना रहे थे शुरह न्याजी। देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां बुधवार को यानी कि आज बैठक करेंगी। इसमें बीजेपी के खिलाफ कितना मजबूत है विपक्ष, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा से।
आज के दिन ये साफ है कि जो सत्तारूढ़ कोलिशन है उसके पास तादाद में वोट ज्यादा है इलेक्टोरल कॉलेज में, लेकिन वो तादाद मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। आज के दिन लगभग 20,000 वेटेड वोट जो हैं कम हैं एनडीए के पास, और इसी पे सारा खेल का दारोमदार है। विपक्ष एकजुटता प्रदर्शन कर रहा है, उनकी कोशिश होगी कि शिवसेना जिसने के पिछले 3 इलेक्शंस में अपनी अलाय बीजेपी का साथ नहीं दिया, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के इलेक्शन के दौरान साथ नहीं दिया, उन्होंने उसके बाद जो प्रतिभा पाटिल का इलेक्शन हुआ उसमें प्रतिभा पाटिल को वोट डाला और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, और उसी तरह से प्रणब मुखर्जी के इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ वोट डाला। तो अगर शिवसेना अपना पुराना रवैया अपनाए रखती है तो हो सकता है कि जो विपक्षी एकजुटता है उसको कुछ फायदा हो, लेकिन मेरा अपना ये आंकलन है कि जो केंद्र में सरकार होती है उसका पलड़ा लगभग भारी रहता है।
सर, कुछ नामों पर अटकलें पहले ही चल रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन है प्रबल दावेदार?
ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ नाम जो अभी पब्लिक डिस्कोर्स में आए हैं वो गोपाल गांधी का एक नाम है, कुछ लोग विद्यासागर का नाम, विद्यासागर राव जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनका नाम लेते हैं बीजेपी की तरफ से, सुमित्रा महाजन का नाम भी चलता है, एक मुर्मू है जो ट्राइबल कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से उनका नाम चलता है, प्रणब मुखर्जी का अपना नाम भी आया है।
सर, जब बात सहमति की हो रही है तो इस पर भी बात करते हैं कि क्या विपक्ष में किसी एक उम्मीदवार के नाम को लेकर सहमति हो पाएगी, इसलिए क्योंकि हाल में नीतीश कुमार संकेत दे चुके हैं कि सर्वसम्मति होनी चाहिए और सत्ताधारी पार्टी भी इसमें शामिल होनी चाहिए।
जी, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है कि सर्वसम्मति राष्ट्रपति के चुनाव पे अगर हो जाए तो वो अद्भुत है, क्योंकि फिर उस ऑफिस में एक आस्था बनी रहती है। मगर जब कभी ऐसा राष्ट्रपति मनोनीत हो जाता है जो सब लोगों को मान्य नहीं होता है, और एक दो बार ऐसा माजी में हुआ है, खासकर आपातकालीन काल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद का जो कॉन्डक्ट रहा हमें आज भी याद है। हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे उस वक्त की, उनका एक कार्टून अबू इब्राहिम ने बनाया था कि बाथ टब में बैठे हुए साइन कर रहे हैं ऑर्डिनेंसेस, तो ऐसा छवि राष्ट्रपति का नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है, बता रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा। पिछले कुछ सालों में गोरक्षा या लव जिहाद के नाम पर कई गिरोहों ने कई बेगुनाह लोगों को लिंच किया यानी कि पीट पीट कर मार डाला। ऐसी हिंसा से क्या पुलिस का असर कम हुआ है? उन्मादी भीड़ का शिकार बने लोगों पर हमारी खास सीरीज के तहत बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की ये खास रिपोर्ट।
1.5 महीने पहले जम्मू के निकट पशुओं के एक मुस्लिम व्यापारी परिवार की जमकर पिटाई की जा रही है। पुलिस वालों की मौजूदगी में बच्चे और बूढ़े सभी मार खा रहे हैं। उत्तेजित हमलावर खुद को गौरक्षक बताते हैं, जिनमें से बाद में 11 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही पीड़ित परिवार के खिलाफ भी मवेशियों की तस्करी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। गौरक्षा के नाम पर हो या लव जिहाद के नाम पर, या फिर एंटी रोमियो की मुहिम हो या किसी तस्करी करने वाले की पिटाई, कानून को अपने हाथ में लेना आम बात होती जा रही है। इन विजिलेंटी ग्रुप्स को कुछ केसेस में सियासी संरक्षण हासिल है और कुछ का ख्याल पुलिस रखती है। गौरक्षा के नाम पर हिंसा बढ़ रही है। अब तक 12 बड़े केसेस में 14 लोग मारे जा चुके हैं। अक्सर गौमांस खाने या रखने की अफवाहों से हिंसा भड़कती है। इन अफवाहों को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया जाता है। गौरक्षा और हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से बचाने वाले विजिलेंटी ग्रुप खुलेआम सड़कों पर हथियारों को लहराते घूम रहे हैं। अक्सर कांडों में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है, तो क्या इससे देश में अराजकता फैल रही है? क्या ये कानून और व्यवस्था के एक भयंकर संकट की शुरुआत है? क्या ये जंगल राज का एक ट्रेलर है? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये पुलिस के असर और इसके अधिकार को कमजोर करता है? सीबीआई में एक उच्च अधिकारी रह चुके एनके सिंह के अनुसार पुलिस विजिलेंटी भीड़ से निहत्ते लोगों को बचाने में नाकाम रही है। राजीव अरोड़ा पंजाब में पशुओं की चर्बी साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को सप्लाई करते हैं। कथित गौरक्षकों ने उनके ट्रकों के काफलों पर कई बार हमले किए हैं। वो कहते हैं इस हिंसा से प्रशासन कमजोर होता है।
तो प्रशासन की तो जीरो वैल्यू होगी इसके सामने, कि उनकी कोई वैल्यू थोड़ी रही। कानून नाम की चीज नहीं हुई। एक आदमी गवर्नमेंट पास कर रही है, सब कुछ कर रही है, लाइसेंस दे रही है, वैट ले रही है, साइन ले रही है, उसके बाद फिर वही माल पकड़ा जा रहा है। डॉक्टर शरल का कोई रोल ही नहीं इसमें, से प्रशासन का काम है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये तो गुंडा कर दी है। जिसको मर्जी गरीब को मार दिया, कमजोर को तो कोई भी मार जाता।
उत्तर प्रदेश पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख रह चुके प्रकाश सिंह के अनुसार पुलिस फोर्स में कई तरह की कमियां हैं। इसे सियासी नेता इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। पुलिस का मनोबल नीचे है। वो कहते हैं कि गौरक्षक गलत कर रहे हैं। उनके अनुसार जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा माहौल पैदा होता जा रहा है।
गौरक्षक एक थोड़ा अलग कैटेगरी में आते हैं। वो अभी तक तो थोड़ा दबे हुए थे। अब जब से NDA सरकार बनी है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, वो थोड़ा इम्बोल्डेंड हो गए हैं। उनको लगता है कि अब हम इस दिशा में काम कर सकते हैं। गौरक्षक के नाम से बहुत से अराजक तत्व, बहुत से आपराधिक तत्व भी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं कहा है कि बहुत से व्यक्ति दिन को तो गौरक्षक हैं और रात को वो अपराध करते हैं।
कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि विजिलेंटी ग्रुप धर्म और संस्कृति के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेने को गलत नहीं मानते, कुछ कानून की इज्जत नहीं करते। लेकिन प्रकाश सिंह के अनुसार कानून अपने हाथ में लेने के पीछे लोगों का आपराधिक न्याय प्रणाली से विश्वास के उठने का है। वो कहते हैं कि जब भीड़ को ये लगता है कि अपराध करने वाला कानून से बच सकता है और इसमें देरी हो सकती है, तो क्यों ना हम ही इसे खुद सजा दे दें। विजिलेंटी ग्रुप्स की हिंसा के कारण पशुओं का व्यापार आधा घट गया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मवेशियों के खरीदो फरोख्त का देश का सबसे बड़ा बाजार है। हर रोज 2000 से अधिक जानवरों की यहाँ बिक्री होती है। सारे जानवर सुबह सुबह ही बिक जाते हैं, लेकिन इन दिनों दोपहर में भी काफी मवेशी बाजार में बंधे नजर आते हैं। फौजान अलवी अखिल भारतीय मांस और पशुधन निर्यात के संघ के प्रवक्ता हैं।
इससे तो हजारों फार्मर जुड़ा होगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग रोज आता है और यही एक ऐसी मंडी है हिंदुस्तान में जो रोज ऑपरेट होती है। और यहाँ ऑन एन एवरेज आप देखिए क्या कहते हैं कि 1800-2000 जानवर आता है, लेकिन आज देखिए 400-500 पर रुका हुआ है।
आम जनता पहले से ही पुलिस की नाअहली से परेशान नजर आती है, लेकिन पूर्व अफसरों के अनुसार पुलिस को अपना काम पेशेवर तरीके से तो अंजाम देना ही चाहिए, साथ ही विजिलेंटी गिरोहों से सख्ती से पेश आना चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि दोष सियासी नेताओं को देना चाहिए, जो प्रकाश सिंह और NK सिंह जैसे पूर्व अफसरों के अनुसार इन विजिलेंटी समूहों को संरक्षण देते हैं। उनके अनुसार समस्या ऊपर से शुरू होती है। ज़ुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
उन्मादी भीड़ पर हमारी खास सीरीज के तहत आप सुन रहे थे BBC संवाददाता ज़ुबैर अहमद की खास रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। तमाम अखबार लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हरिता। हरिता बताइए, क्या सुर्खियां हैं आज अखबारों की?
सबसे पहले बात हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की करती हूँ। इसके पहले पन्ने पर मेरी नज़र पड़ी एक खबर पे, जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने कुछ सिफारिशें जारी की हैं एक बुकलेट के जरिए, जिसमें गर्भवती महिलाओं को मांसाहार और सेक्स से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये गर्भवती महिलाएँ कामनाओं, गुस्से, मोहमाया और नफरत से दूर रहें और आध्यात्मिक विचार रखें। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने 21 जून के योगा दिवस जो आने वाला है उससे पहले एक बुकलेट जारी की, जिसमें ये सिफारिशें हैं, अखबार का ऐसा कहना है। लेकिन केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक कहते हैं, अखबार खुद ही ये लिख रहा है कि इस बुकलेट में सेक्स से दूर रहने की बात नहीं की गई है, बाकी और सलाह दी गई है।
इस पर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है।
एक और खबर जिस पर मेरी निगाह पड़ी तो ठहर गई, ये थी टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने की पहली हेडलाइन। इसमें एक बच्ची के हाथ से बना एक स्केच है जिसकी तस्वीर छापी गई है। अखबार लिखता है कि ये बच्ची जो है वो बलात्कार का शिकार हुई थी और कोर्ट में जज ने बच्ची के हाथ से बनी हुई इस स्केच को जो है सबूत माना है और कहा है कि जब वो मतलब मामला ये है कि वो 8 साल की जब थी, कुछ साल पहले की बात है ये, तो तब उसके साथ जो हुआ उसकी यादों को लेकर उसने ये स्केच बनाया है। इसमें निर्वस्त्र करके उसके कपड़े उतार कर उसके साथ क्या किया गया, ऐसा एक चित्रण है। और जज ने कहा कि इससे साबित होता है कि उसकी यादें ये बता रही हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, और इसी के बेसिस पर 5 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। एक खबर जो सारे ही अखबारों के पहले पन्ने पर छाई हुई है वो ये है कि कल एक बाज की वजह से जो है दिल्ली मेट्रो चरमरा गई और इसकी ब्लू लाइन पर काफ़ी परेशानी हुई लोगों को, लाखों लोग फंसे रहे, कई मेट्रो स्टेशन पर भीड़ भाड़ हुई और इसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी कल रात
जी, इस वजह से आप दफ्तर थोड़ा सा देर से पहुंची
थी। देर से पहुंचे थे हाँ
जी।
इसके अलावा शाहरुख खान जो है वो भी आज अखबारों में छाए हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि शाहरुख खान फोर्ब्स मैगजीन की सूची में शामिल हो गए हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने $38 मिलियन करीब जो है, यानी कि 244 करोड़ रुपये उन्होंने 2016 के साल में कमाए हैं और वो 65वें नंबर पर इस सूची में शामिल थे। विजय माल्या जो कि अखबारों में छाए रहे, हमारे कार्यक्रम में भी उनकी चर्चा हमने की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर लिखा गया है कि ब्रिटेन की अदालत की जज ने जो है वो कहा कि माल्या के मामले में भारत की सरकार ही जो है ढिलाई बरत रही है और अभी तक सबूत नहीं दिए गए हैं जिसके कारण कि प्रत्यर्पण का ये जो मामला है ये आगे नहीं बढ़ सका है। इसके अलावा एक खबर दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर मैं देख रही हूँ, खाड़ी देशों ने जो हाल ही में कतर को अलग थलग कर दिया है और उसके लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं वो सामान लाने ले जाने को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी सऊदी अरब और अन्य देशों पर निर्भर था इसे लेकर, लेकिन कतर के एक कारोबारी ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। 4000 गायों को अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से वो एयरलिफ्ट कराने जा रहे हैं। ये खबर छापी है दैनिक भास्कर ने अपने खास कॉलम में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिता आपका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड के कार्डिफ में होगा पहला सेमीफाइनल, जहां दो दो हाथ करने उतरेंगे मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में बांग्लादेश या भारत से भिड़ेगी। होस्ट इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम की क्या खास तैयारी है, हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने लंदन में मौजूद बीबीसी उर्दू के संवाददाता खालिद करामत से पूछा।
जी देखें, अगर तो ऑन पेपर देखा जाए, एदाद व शुमार और स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर नज़र आती है। इंग्लैंड की अगर बैटिंग लाइनअप को ही देख लें तो उनके पास बहुत अच्छे बिग हिटर्स हैं, जबकि अगर पाकिस्तान की टीम को देखा जाए तो उनकी बैटिंग जो है उनको डिसअपॉइंट करती रही है पिछले मैचों में। इवन जो मैचेस जीते भी हैं उनमें भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई है। तो उनकी तैयारी में सबसे अहम चीज़ तो यही होगी कि वो अपनी बैटिंग पर ध्यान दें, कुछ शायद ज़रा अपने बैटिंग लाइनअप को देखें, क्योंकि अब तक जो है इस टूर्नामेंट में उनको कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई।
खालिद साहब ये बताइए कि इंग्लैंड का, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत फॉर्म में है टीम और दावेदार भी मानी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का परफॉर्मेंस एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम जीत नहीं पाएगी, तो माहौल कैसा है टीम का, क्योंकि भारत के खिलाफ बहुत बड़े अंतर से वो हारे थे।
हाँ जी, अगर भारत के खिलाफ ही मैच को देखा जाए तो उसके बाद टीम का मोरल काफ़ी डाउन लगा और ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सरफराज जो कप्तान हैं टीम के वो खुद नहीं आए बल्कि कोच मिकी आर्थर आए, जबकि इंडिया की साइड से कप्तान कोहली जो है वो उन्होंने प्रेस का सामना किया। उसके बाद जब अगला मैच हुआ उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे भी इस बात का काफ़ी वाज़े इजहार हुआ कि टीम जो है मॉरली काफ़ी डाउन है, लेकिन जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो ज़रा उनका मॉरल बूस्ट हुआ और उनको अपनी शायद कैपेबिलिटी पर, अपनी स्किल्स पर यकीन थोड़ा होने लगा कि शायद वो ये कुछ इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जीत सकते हैं।
एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल हो जाए, तो इसको लेकर कितना एक्साइटमेंट है इस बारे में?
बिल्कुल, यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट है इस बारे में और आपको पता ही होगा कि हर पाकिस्तान इंडिया का मैच टोटल सेल आउट होता है।
अब कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी दखल की जांच कर रही सीनेट की कमेटी के सामने पेश हुए, कहा रूसी अधिकारियों से चुनाव प्रचार के दौरान नहीं की कोई मुलाकात। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने की कवायद जारी, आज कंजर्वेटिव पार्टी और DUP के बीच समझौता संभव। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ में बने रहना चाहे तो दरवाजे अभी भी खुले हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा ब्रेक्सिट में अब नहीं की जाएगी और अगले हफ्ते ही ब्रेक्सिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोलंबिया के फार्क विद्रोही गुट ने संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को अपने 30% हथियार सौंप दिए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजित सारथी। शाम की सभा दिन भर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।